अशोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विश्वपाद परमहंस परिवकाचार्य अशोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विश्वपाद परमहंस साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय। जय विश्वपाद परमहंस सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय विश्वपाद परमहंस वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथदास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास छठ गोस्वामी प्रभु की प्रेम से कहो जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराशि मद भागवतम स्कंद 7 अध्याय 13 श्लोक संख्या 46 ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। अध्याय का शीर्षक है पूर्ण पुरुष का आचरण। तो मैं श्लोक बोलूंगा। धर्मं पारं हंसं वे मने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा तथा प्रीत आमन्त्रत्र प्रयोग्रहम्। धर्मं पारं हंसं वे मने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा तथा प्रीत आमन्त्र प्रयोग्रहम्। धर्मं पारं हंसं वे मने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा तथा प्रीत आमन्त्र प्रयोग्रहम्। कोई एक प्रभु जी और एक माता जी बोल सकते हैं। श्री नारद उवाच धर्मं पारं हंसं वे मने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा तथा प्रीता आमन्त्र प्रयोग्रहम्। माताजी नारद उवाच धर्मं पारं हंसं वे शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइएगा। श्री नारदा उवाच श्री नारद मुनि ने कहा धर्मम वृत्ति परक कर्तव्य पारम हंस्यम परम हंसो अर्थात अत्यंत पूर्ण मनुष्यों का वह निसंदेह मुने है साधु पुरुष से श्रुत्वा सुनकर असुर ईश्वरः असुरों के राजा भक्त प्रह्लाद महाराज ने पूजयित्वा साधु पुरुष की पूजा करके ततः पश्चात प्रीतः अत्यंत प्रसन्न होकर आमंत्र अनुमति लेकर प्रयो उस स्थान को छोड़ दिया ग्रहम अपने घर जाने के लिए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा साधु से ये उपदेश सुनकर असुर राज भक्त प्रह्लाद महाराज पूर्ण पुरुष परमहंस के वृत्ति परक कर्तव्य समझ गए। इस प्रकार उन्होंने इस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर हेतु विदा हुए। तात्पर्य यशक श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128 में उद्धृत किया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कीबा विप्र कीबा नासी शूद्र के ने नए यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से पूर्णतया अवगत हो गुरु बन सकता है। अतः भक्त प्रह्लाद महाराज असुरों पर शासन करने वाले गृहस्थ होते हुए भी परमहंस थे, फलस्वरूप वे हमारे गुरु हैं। इसलिए गुरुओं की सूची में भक्त प्रह्लाद के नाम का उल्लेख है। शंभु नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिवेस्सा की वर्यम श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 20। निष्कर्ष यह है कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होता है, भगवत प्रिय। ऐसा परमहंस जीवन की किसी भी अवस्था में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में समान रूप से मुक्त तथा उत्कृष्ट रहता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत पूर्ण पुरुष का आचरण नामक 13वें अध्याय का भक्ति वदन तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत् कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो आप सभी वैष्णव और वैष्णवियों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन सत्र में। ऐसा कहा जाता है कि यदि कौवा मंदिर के ऊंचे शिखर पर बैठ भी जाए तो कभी गरुड़ नहीं बन सकता है। उसकी चोंच अगर सोने की भी कर दी जाए और उसके पंखों में हीरे मोती भी जड़ दिए जाएं तो कौवा कौवा ही रहेगा, वो गरुड़ नहीं बनेगा। तो वैसे कुछ स्थिति हमारी भी है कि व्यासाश्रम में बैठे जरूर हैं लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी समा वैष्णवगणों में वैष्णवों के चरणों में और वैष्णवियों के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करें। श्रीमद्भागवतम जो कि मुक्त जीवात्माओं का विज्ञान है, भगवत तत्व का विज्ञान है, अभी आ रहा है, जो कि भगवत तत्व का विज्ञान है, वो लोग इसकी सही गुणगान करते हैं। और इसी प्रकार ऑनलाइन इंटरनेट पर जो भक्तगण सुन रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो भी अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान करें, फूटा फूटा जो कुछ भी हम जानते हैं थोड़ी सी चर्चा कर सकें। अव्वल तो श्रीमद्भागवतम सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, कहीं पर भी सुने उसको। विशेष रूप से श्रीधाम वृंदावन में वो भी श्रीमद्भागवतम की चर्चा करना सुनना परम सौभाग्य। वही बलराम हॉल में जहाँ की बढ़िया अच्छा एसी लगा हुआ है, व्यवस्था की गई है भक्तगणों के लिए, साउंड सिस्टम भी बहुत अच्छा है और फिर कथा के बाद फिर प्रसाद की व्यवस्था भी है, तो निश्चय ही हमें इन सब चीज़ों के लिए जो इस्कॉन वृंदावन का व्यवस्थापक है, जो मैनेजमेंट है, वो बधाई की पात्र है। हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तो जो श्रीमद्भागवतम का सातवां स्कंद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रीमद्भागवतम के 10 विषय वस्तु हैं, यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान इत्यादि, वैसे आपको पता है। तो उसमें जो ये है उति से संबंधित ये स्कंद है पूरा। और इस अध्याय में टोटल 15 इस स्कंद में 15 अध्याय दिए गए हैं, जिनमें शुरू के जो 10 अध्याय हैं वो शुद्ध भक्ति की स्थापना करते हैं, शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं, जो कि आप सब सुन चुके हैं प्रहलाद महाराज के माध्यम से। और बाकी के जो 5 अध्याय हैं, इस आचार्य बताते हैं कि वो मिश्र भक्ति है, मिश्र भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। मिश्र भक्ति यानी ऐसी भक्ति जो कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन साथ में ज्ञान और योग इत्यादि से आच्छादित है, कवर्ड है, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में। तो इस अध्याय की चर्चा कुछ इस तरह से शुरुआत होती है। एक्चुअली हमने सोचा कि चूंकि ये अध्याय का आखिरी श्लोक है तो हमने कहा कि ऐसा कुछ करा जाए कि शुरू से जो कथा से चालू हुई है अध्याय से पहले श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक उसका पहले संक्षिप्त में वर्णन कर दिया जाए, ताकि भक्तगणों को सब पता चल जाए कि यहाँ क्या क्या हुआ था या क्या क्या चल रहा है। कुछ भक्तों को तो पता होगा क्योंकि जिनको नहीं पता तो वो शुरू से समझ सकते कि इस अध्याय में अभी तक क्या क्या हुआ। तो इस तरह से अध्याय चालू होता है। इसका लिंक इस तरह से है कि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि आप हमें सनातन धर्म के बारे में बताइए, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए। तो नारद मुनि वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते हैं, तो ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में बताते हैं जो आप सब लोग सुन चुके, फिर वो वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताते हैं वो भी आप लोग सुन चुके, अगले अध्याय में वो गृहस्थ आश्रम के बताएंगे जिसकी चर्चा कल से प्रारंभ होगी। अभी आज के इस अध्याय में नारद मुनि संन्यास आश्रम के विषय में बताते हैं कि सन्यासी जो होते हैं उनका चरित्र आचरण कैसा होना चाहिए, उसकी चेतना कैसी होती है, उससे गुण कैसे होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय को 4 विभागों में विभाजित किया है श्लोक वाइज। तो हम प्रयास करें कि हम नियत समय के अंदर पूरे श्लोक कवर कर दें, किसी भी श्लोक को मिस ना करें और निर्धारित समय में क्लास हो जाए। तो आप लोग धैर्य रखिएगा, धैर्यपूर्वक सुनिएगा। तो श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 3 तक नारद मुनि जो है वो सन्यासी के आचरण के बारे में बताते हैं। फिर श्लोक क्रमांक 4 से लेकर 6 तक सन्यासी की चेतना के बारे में बताते हैं कि सन्यासी की चेतना कैसी होती है, वो इस भौतिक जगत में कैसे देखता है भौतिक जगत का वो। फिर श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 10 तक सन्यासी के गुणों के बारे में बताया जाता है। और फिर श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 46 तक, यानी जो अंतिम श्लोक है, उसमें एक नारद मुनि एक बहुत अद्भुत एक ऐतिहासिक वार्तालाप सुनाते हैं जो कि प्रहलाद महाराज और अवधूत ब्राह्मण के बीच में हुआ। तो इस तरह से इस पूरा अध्याय का ये पूरा सेटअप है। तो हम शुरू से चालू करेंगे श्लोक नंबर 1 से। तो श्लोक नंबर 1 में सन्यासी के आचरण के बारे में बताया गया है, सन्यासी का आचरण कैसा होता है। संक्षिप्त में चर्चा होगी, ज़्यादा नहीं होगी, कि जैसे कि सन्यासी जो है अनासक्त होता है इस भौतिक जगत से, वो अपनी इस भौतिक जगत में वो किसी भी वस्तु भौतिक वस्तु के लिए निर्भर नहीं होता है, निरपेक्षा सहायता वो जनरली सन्यासी ऑलवेज ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, एक स्थान पर बहुत अधिक रहते नहीं हैं। फिर वो बताते हैं कि जो सन्यासी होता है वो किसी भी व्यक्ति और किसी भी स्थान पर निर्भर नहीं होता है, अनापाश्रया। और फिर वो बताते हैं कि सन्यासी जो है वो सर्वभूताश्रुता, यानी वो सभी जीवों का वेल विशर होता है, शुभ चिंतक होता है, सबके मंगल की कामना करता है। फिर बताते पीसफुल, शांति का सन्यासी का गुण है, सन्यासी का आचरण है कि वो शांत होता है, पीसफुल होता है। हम जब ये अध्याय का अध्ययन कर रहे थे तो एक सन्यासी का बताया उनका कंडक्ट आचरण कि वो शांत होता है, तो अचानक समय हमारे प्रिय धर्मांतर प्रभु की याद आ गई, शांत वैष्णवा। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि सन्यासी होता है नारायण परायण होता है, मतलब भगवान पे पूरी तरह निर्भर होता है। और फिर आत्मरामा, यानी वो आत्मसंतुष्ट होता है, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, उसी की भौतिक जगत में किसी से कोई शिकायत नहीं होती है बहुत ज़्यादा। फिर आगे चर्चा चलती है, नारद मुनि बताते हैं कि सन्यासी की चेतना के बारे में बताते हैं कि जो सन्यासी होता है वो इस जगत की हर वस्तु में भगवान को देखता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है, ये सन्यासी की चेतना होती है, और इसी चेतना के आधार पर वो इस भौतिक जगत में व्यवहार करता है। फिर आगे के श्लोकों में श्लोक क्रमांक 7 से लेकर 10 तक सन्यासी के गुणों के बारे में बताया जाता है। उनका पहला बड़ा अच्छा गुण बताते हैं कि सन्यासी की विशेषता ये होती है कि वह हर उस शास्त्र को रिजेक्ट कर देता है जो भक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करते। जितना ही भौतिक शास्त्र है, भौतिक तर्क है, सन्यासी उनको ग्रहण नहीं करता, उनको वही रिजेक्ट कर देता है। अब दूसरा बताते हैं कि सन्यासी जो होता है वो अपने शिष्यों को भौतिक प्रलोभन नहीं देता है, अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें भौतिक प्रलोभन नहीं देगा, जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी करवा दूंगा या लड़के की नौकरी लगवा दूंगा इत्यादि इत्यादि, जैसा कि बाहर की दुनिया में कभी कभी देखा जाता है। तो सन्यासी कभी अपने अनुयायी भौतिक प्रलोभन दे के नहीं बनाते, उल्टा वो उसकी भौतिक मानसिकता को काटते हैं। और फिर वो बताते हैं नारद मुनि की जो सन्यासी होता है, जो परंपरा का सन्यासी होता है, वो जब हरि कथा करता है तो हरि कथा से व्यवसाय नहीं करता है। सही, कभी कभी हम बाहर देख सकते हैं कि जो भगवत प्रवक्ता होते हैं तो आचार्य जी हमको कथा करानी है, सप्ताह कराना है, ठीक है हो जाएगा 7 लाख, अरे नहीं तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है 5 लाख। तो सन्यासी जो है वो कथा का वाचन धन कमाने के आधार पर नहीं करता। शास्त्र ये भी बोलते हैं कि कभी भी जो है सन्यासी किसी भी भक्त को कथा का वाचन जीविका के लिए नहीं करना चाहिए। और फिर आगे आपको तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, यदि सन्यासी को भगवान की योजना से विधि के विधान से खूब धन मिल जाए अगर, तो वो क्या करता है, उस धन का उपयोग मंदिर बनाने में करता है। क्यों मंदिर बनाता है वो, ताकि जो जीव हैं बाहर के, जो भटकते हुए जीव, वो भौतिक जगत में परेशान हैं, धक्के खा रहे हैं, वो मंदिर में आकर आश्रय ले सकें और अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। उस पर्पज के लिए सन्यासी धन का उपयोग करता है और अच्छे से करता है। इसके बाद फिर वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं सन्यासी की, कि सन्यासी की एक और विशेषता होती है कि हालांकि वो विद्वान होता है, भगवत तत्व जानता है, उसे ज्ञान की जानकारी है, लेकिन वो बोलेगा तभी जब उससे पूछा जाएगा, उससे पहले वो नहीं बोलते। अफकोर्स हमारी संस्था प्रचार की संस्था, तो कभी कभी वरिष्ठ वैष्णव है वो बोल सकते हैं, उनको बोलना भी चाहिए सुधार की दृष्टि से, बट इन जनरल सन्यासी को पता भी हो तो वो बोलता नहीं है। मनुस्मृति में ये बात आती है, श्लोक आता है जहाँ पर वो बोलते हैं जो विद्वान जन होते हैं उनको ज्ञान होगा भी तो बिना पूछे बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे तो पात्र की योग्यता देख के बोलते हैं वो, नहीं तो बोलेंगे नहीं। देखिए जड़ भरत, लोगों ने कितना उत्साह है उनको बोलने के लिए, कुछ तो कहे कुछ तो कहे, एक शब्द नहीं बोले उस भौतिक जगत के लोगों को, लेकिन जब उन्होंने बोला, जब उनको सही पात्र दिखा कि ग्रहगण, तो उनके मुंह से एक शब्द हीरे और मोती के समान निकला। सुखदेव गोस्वामी बच्चे पत्थर मार रहे हैं, उनको प्रवोक कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले वो। जब उन्होंने बोलना चालू किया, सही पात्र दिखा परीक्षित महाराज, तो ऐसी वाणी बोली, इतिहास रच दिया। आज तक उनकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो परमहंसों का गुण होता है, अनावश्यक नहीं बोलते वो, हो पता होते हुए भी। फिर वो बताते हैं कि इतना सब होने के बाद वो ये भी बताते हैं दसवें श्लोक में कि जो सन्यासी होते हैं वो इस भौतिक जगत में अपने आप को छुपाते हैं। छुपाने से मतलब उनका जो ज्ञान है उसका वो अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते। और लेकिन जो शास्त्र को जानता है, जिसको थोड़ी भी बुद्धि है, वो आचरण से समझ जाता है कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत विद्वान पुरुष है, शास्त्रों के ज्ञाता है, जीवन के मर्म को जानते हैं, जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, और जीवन के लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है वो भी जानते हैं, और दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। इसी संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुनाते हैं, ऐतिहासिक वार्ता, जो कि प्रहलाद महाराज और अद्भुत ब्राह्मण के बीच में हुई है, कन्वर्सेशन, हिस्टोरिकल कन्वर्सेशन। तो वो चर्चा कुछ इस तरह से चालू होती है, एक बार प्रहलाद महाराज हैं वो विश्व भ्रमण पे निकलते हैं, तो घूमते घूमते वो कावेरी नदी के तट पर जाते हैं, वहाँ पे सहाय पर्वत होता है, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात, वो देखते एक व्यक्ति को जो कि मैले कुचले कपड़े हैं, फर्श पर लेटे हुए हैं, धूल में दूसरित हैं, काला अजीब सा हाल है उनका, मतलब लोगों ने देख के पागल ही समझेंगे। वो उनको देखते हैं और बाकी के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं होता, ऐसा भागवत में वर्णन है, कि ये वही व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं। लेकिन ये अद्भुत ब्राह्मण बिल्कुल दुनिया इंडिफरेंट है, इस भौतिक जगत के लिए एकदम अलग से है, क्या बोलते हैं, उदासीन है वो हिंदी में। तो प्रहलाद महाराज जैसे ही उनको देखते हैं, वो देख कर तुरंत समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत पहुंचे हुए संत है, महात्मा है, बहुत सिद्ध आत्मा है। अभी देखिए तो प्रभुपाद जी इसमें कई शिक्षाएं बताते हैं। अगर हमें जानना है कि हु इज हु, कौन भक्त कौन है, कितनी भक्ति प्रगति की है उसने, कितना वो उन्नत है, तो सबसे आसान और सशक्त तरीका है हम भी वैसे भक्त बन जाएं। तब हम समझ सकते हैं कि कौन सा भक्त कौन से स्तर पर है, नहीं तो अपनी बुद्धि से अगर सोचेंगे गड़बड़ी हो सकती है, अपराध कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक कोट करते हैं, वैष्णवेरे क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझा है। कभी भी किसी वैष्णव को उसकी बाहरी क्रियाओं देख के जज नहीं करना चाहिए, वो ऐसा क्यों कर रहा है, अरे वो तो ऐसे ही ठप्पा लगा दिया, ये भक्त ये तो ऐसे ही है, वो माता जी वो तो ऐसे ठप्पा लगा दिया, ये वैष्णव का काम नहीं है, ये बाहर के लोग करते हैं। तीसरा वो बताते हैं कि बड़ी अच्छी बात बताते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कभी भी वैष्णवों से उनके भूतकाल के बारे में नहीं पूछना चाहिए, वैष्णव खुद बताएं तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल इन प्रिंसिपल वैष्णवों के पास्ट में क्या क्या हुआ वो जानकारी नहीं लेनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो इस तरह से चर्चा चलती है, प्रहलाद महाराज अद्भुत ब्राह्मण को देखते हैं और वो देखते ही उनको उनकी पूजा करते हैं और अपना सर, और अद्भुत ब्राह्मण जो कीचड़ में लेटे हुए हैं, धूल में दूसरित हैं, मेले कुचले वस्त्र हैं, बाल भी यहीं कहीं हैं, हुलिया कोई बहुत अच्छा नहीं है देखने में, उनके चरण में अपना सर रखते हैं, उनकी उनकी उनका गुणगान करते हैं और उनसे एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न बड़ा अद्भुत पूछते हैं, तो हमने टीका में देखा कि आखिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों किया। तो प्रहलाद महाराज उनसे प्रश्न पूछते हैं कि देखिए आप तो एक अवधूत हैं, अवधूत का अर्थ है एक अर्थ कई अर्थ है, एक अर्थ ये है कि ऐसा साधु जो जीविका के लिए कुछ प्रयास नहीं करता। तो बोलते हैं आपने तो अजागर वृत्ति ग्रहण की हुई है, आप जीविका के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप इतने तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट चुस्त और मुस्तैद कैसे, इतने मोटे कैसे हैं आप, ये प्रश्न वो पूछते हैं उनसे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती इसमें बड़ी अच्छी अपनी टीका देते हैं, वो ये कहते हैं अपनी टीका में कि एक्चुअली प्रहलाद महाराज अद्भुत ब्राह्मण को ये संकेत दे रहे हैं कि देखिए आप ये नहीं बोल सकते कि आप मोटे हो क्योंकि आप अपनी जीविका के लिए कुछ करते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर की दुनिया में जो भौतिक जगत के लोग हैं वो बहुत मोटे होते हैं। क्यों होते हैं प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मैंने ऐसा देखा है कि वो जीविका करने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए, भौतिक ऐश्वर्य का आनंद उठाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, एंडेवर करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद जब उन पर काफी धन आ जाता है, धन संपत्ति आ जाती है, तो साधारणतः ऐसा देखा गया है कि उस व्यक्ति के जो परिजन है वो बड़े मोटे हस्त चुस्त दुरुस्त निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, वो लोग ज्यादा कुछ काम नहीं करते, खाते पीते सोते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप कैसे इतने मोटे हो, आप तो इसका ब्रह्मचारी नहीं हो। मजाक करके बोल रहा हूं। तो बोलते आप इतने मोटे क्यों हो? तो अवधूत ब्राह्मण मानो ऐसा कह रहे हैं, टीका में बताते हैं चक्रदी प्रहलाद जी को, कि मानो वो ऐसा कह रहे हैं कि देखिए आप एक अनुमान लगा रहे हो, गेजिंग लगा रहे हो, उस एक लॉजिक से आधार से आप मुझे देख रहे हो। उस लॉजिक का नाम है देवदत्त लॉजिक। यदि शास्त्रों में एक लॉजिक दिया जाता है उसको बोलते हैं देवदत्त लॉजिक। तो वो जीव स्वामी ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ऐसे इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, एक देवदत्त नाम का लड़का है जो बहुत मोटा है, एकदम तंदुरुस्त है, वजन है शरीर में काफी, लेकिन उसको कोई कभी खाते हुए नहीं देखता है, वो किसी को कभी खाते हुए नहीं देखता है। तो लोग ऐसा कहेंगे, ऐसा कहते हैं कि देवदत्त देखिए बहुत मोटा है लेकिन वो दिन में नहीं खाता। दिन में नहीं खाता का मतलब क्या है? कब खाता है वो? तब तो मोटा है। रात में खा रहा है तब तो मोटा है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि वो उनको डायरेक्टली ये दे रहे कि नहीं, आप ये मत सोचना कि मैं इतना मोटा हूं क्योंकि मैं भी बहुत परिश्रम करता हूं और धन कमाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो अपनी, चूंकि प्रहलाद महाराज बड़े अच्छे तरीके से इस बात को बोलते हैं, बड़े मधुर तरीके से वो बोलते हैं, तो बोलते हैं कि चूंकि आपने बड़े बड़े मधुर तरीके से बोला है, चूंकि प्रहलाद महाराज महाभागवत हैं, वो जानते हैं कि वैष्णव को किस तरह से वार्तालाप की जाती है, तो बोलते हैं कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अब यहां से उत्तर देना चालू करेंगे अवधूत ब्राह्मण प्रहलाद महाराज को, श्लोक संख्या 21 से। तो उत्तर अपनी हिस्ट्री बताते हैं, अपनी पास्ट लाइफ बताते हैं। तो उसमें बोलते हैं, हे असुरियों में सर्वश्रेष्ठ है ना प्रहलाद महाराज, आपको दुनिया के जितने विद्वान लोग हैं, जो महान लोग हैं, जो मनीषी हैं, जो मुनिगण हैं, आपका बहुत महान सम्मान करते हैं, बहुत आपके आपको बहुत ऊंचे दर्जे का सम्मान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो बताते हैं कि आप व्यक्ति का चरित्र केवल देख के समझ जाते हैं। दूर से आप आदमी को देख लेंगे और आप व्यक्ति का चरित्र समझ जाएंगे, इस व्यक्ति का यह चरित्र है। क्यों है ऐसा? आपको समझ जाते हैं। तो श्लोक में शब्द आया आध्यात्म चक्षु, आपके पास आध्यात्म चक्षु है। अर्थात अब जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अपनी खुद की बुद्धि से नहीं देखते हैं, आप कहां से देखते हैं? साधु गुरु और शास्त्र के आधार पर आप एक व्यक्ति के चरित्र का आकलन करते हैं। इसी कारण से आपका आपका जो आकलन बिल्कुल सही बैठता है, परफेक्ट होता है। तो यहां पर भी एक शिक्षा आती है कि देखिए वैष्णव गणों को कभी भी किसी भी व्यक्ति का आकलन या इस जगत को यदि उसको देखना भी है तो उसे शास्त्र चक्षु के आधार पर देखना चाहिए, तब वो कुछ सही हद तक देख पाएगा। जितना अधिक तक उसका शास्त्रों का ज्ञान है, जितना अधिक उसके भक्तिवंत तात्पर्य में उसकी पकड़ है, शास्त्रों में जितनी पकड़ होगी उसके हिसाब से वो इस जगत को यथावत देख पाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत भ्रम तो रहेगा ही। लेकिन प्रहलाद महाराज परफेक्ट देख रहे हैं एकदम, वो बोल रहे हैं कि आप शास्त्र पढ़ते हैं, आप जानते हैं, आपके पास आध्यात्मिक चक्षु है, तो आप व्यक्ति का चरित्र तुरंत देख सकते हैं। तो जो भक्त होता है वो कभी भी दूसरों को आकलन अपने खुद की बुद्धि से नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अंदर चार दोष है, मेरी इंद्रियां अपूर्ण है, वो चार दोष आप लोगों को पता है। तो इसलिए जो कृष्ण भक्त होता है, विशेष उन्नत भक्त जो होते हैं, जो प्रगतिशील भक्त होते हैं, वो उस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी देखेंगे उसका निष्कर्ष शास्त्र के आधार पर निकालते हैं। हाउ इज दैट? अगले श्लोक में बताते हैं। ऐसा क्यों है कि आप शास्त्र के आधार पर आपको देख पाते हैं? तो बताते हैं केवलिया भक्त्या, आप जो हैं शुद्ध भक्त हैं और आप जो हैं केवलिया भक्त हैं। केवलिया भक्त यानी अनन्या भक्त हैं या एकांतिका भक्त हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं। तो ये गुण होने के कारण आप जो है सही देख पाते हैं। और फिर अब यहाँ से वो अपने बारे में बताते हैं कि देखिए चूंकि आप सब जानते हैं आप भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं, भगवत परायण हैं, अब मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। तो यहाँ से वो कथा चालू करते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए मैं जब भौतिक जगत में रहा तो मैं तरह तरह की योनियों में मैंने भ्रमण किया, कष्ट उठाया, तकलीफ उठाई। क्यों उठाई? भौतिक इच्छाओं के कारण, इस जगत को भोगने के कारण। जब भी इस जगत में जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत का एंजॉय करना चाहेगा तो गीता में भगवान बोलते हैं दुख योनि, क्या श्लोक, दुख यही सस्पजाब होगा, दुख योना ये विद्यादांतवंत कौनते तेषु च न रमते बुधा। जब भी जगत को सुख करने का कोशिश करेंगे तो बदले में जा दुख का जन्म होगा, जन्म होता है। बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते, तो बोले मैंने भी भौतिक इच्छा कारण तरह तरह की योनियों में भ्रमण किया और तरह तरह के कष्ट उठाए, बहुत कष्ट भोगा मैंने। और इसके बाद फिर वो बताते हैं किसी तरह धक्के खाते 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 में मनुष्य शरीर में आया, मनुष्य योनि मुझे मिली। और मनुष्य योनि में आने के बाद वो बताते हैं कि एक तरह का एक जंक्शन है, ये एक ऐसा स्तर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर व्यक्ति स्वर्ग भी जा सकता है, चाहे तो नर्क भी जा सकता है, चाहे तो अगला जन्म मनुष्य का फिर से ले सकता है, या चाहे भगवत धाम भी जा सकता है। तो जो जो, जो मनुष्य योनि है ये एकमात्र ऐसी योनि है जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से व्यक्ति किसी भी जगह निकल सकता है। जैसे मथुरा जंक्शन है, अगर कई तरह तरह की ट्रेन जा रही है, दिल्ली मथुरा बम्बे जहाँ जाना हो इजीली जा सकते हैं। तो वैसे ये मनुष्य योनि जो मानव योनि है वो एक जंक्शन की तरह है जहाँ से व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ की राह पकड़ सकता है। फिर वो आगे बताते हैं कि देखिए मैंने इस जगत में जब मनुष्य योनि में मैं आया तो मैंने देखा कि इस जगत में लोग बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, बहुत दुख भोग रहे हैं, कष्ट उठाते हैं लोग। क्यों कष्ट उठाते हैं वो लोग? क्योंकि इस जगत में जब एक ये भौतिकवादियों की बात कर रहे हैं वो, कि कोई पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो वो सेक्स का आनंद उठाना चाहते हैं, और जैसे ही वो सेक्स का आनंद उठाना चाहते हैं वहीं से उनका सफर यात्रा चालू हो जाती है। काहे कि पुनरभि जनन पुनरभि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्र में जीव फंसता जाता 84 लाख की उम्र में भटकता रहता है। तो ये सब देखकर मैंने, चूंकि भौतिक जगत के लोग सुख उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जितना सुख उठा रहे उतना कर्म बंधन लग रहा है उनको, उतना दुख भोग रहे हैं, तो मैंने भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया। अभी देखिए बोलना आसान है भौतिक इच्छाओं का त्याग करना, हम ही केवल बोल ही रहे हैं बस 15 साल से लेकिन यहाँ जब अवधूत ब्राह्मण आते इन्हें पूरा त्याग कर दिया। क्यों? कारण बता रहे हैं वो, क्योंकि सच्चा सुख कहाँ है? वेयर इज द रियल हैप्पीनेस एग्जिस्ट? आध्यात्म में। आध्यात्म सुख जो है, जो आत्मा का सुख है, वो परम सुख है। तो उस परम सुख की प्राप्ति करने के लिए मैंने भौतिक सुख को छोड़ा है। प्रभा जी बोलते थे हमें, जब तक ऊंचा सुख नहीं मिलेगा तो हम नीचे सुख को नहीं छोड़ सकते, विषय में नहीं वर्तनते। इस तरह से फिर आगे चर्चा करते हैं, वो आगे बताते हैं भौतिकवादियों का अनुभव। जैसे आप लोग देखते हैं कि भौतिक जगत में शास्त्र बताते हैं पावर्ग, पा यानी परिश्रम, लोग बहुत परिश्रम करते हैं, अधिक लेबर करते हैं, श्रम करते हैं सुखी रहने के लिए। तो पा के बाद क्या आता है? फा, फा यानी फैन, झाग निकल, इतना परिश्रम करते हैं कि मुंह से झाग निकल जाता है। और फिर आता है बा, बा यानी व्यर्थता, संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में कहें तो हताशा या निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, इतना श्रम करता लेकिन दिखता मैं सुखी नहीं हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ 24 घंटे फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। उसके बाद फिर पा फा भा के बाद भा, भय उत्पन्न हो जाता है। अब सब कमा तो लिया है लेकिन उसका ध्यान भी रखना है, तरह तरह के भय होते हैं, तरह तरह की चिंताएं असुरक्षाएं होती हैं। और फिर अंत में माँ, मृत्यु, पा फा भा माँ, ये भौतिक जीवन की कहानी है जो 5 अक्षरों पे घूमती है। भक्त कैसा है? अपवर्ग, उन 5ों को लांगता है। फिर आगे वो बताते हैं कि देखिए मैंने ये देखा कि भौतिक जगत में लोग आखिर दुखी क्यों है, कष्ट क्यों भोग रहे हैं भौतिक जगत में लोग, तो बड़ा अच्छा कारण बताते हैं वो, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा या अज्ञान अविद्या। जीव जो है यहाँ पर आकर भगवान को भूल गया है, भूलिया तुम्हारे संसार है अच्छा। तो जीव जो किसी जगत में आ गया, माँ के पेट में तो बोल क्या था, प्रभु कष्ट सहारे जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, हेल्प भी नहीं पा रहा, बाहर तो निकालिए, खूब वचन करूंगा आपका, आप अवसर तो दीजिए। लेकिन जैसे ही बाहर आते ही ना, आई विल एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, सब भूल जाता है वो। तो बता रहे कि व्यक्ति जो है भगवान को भूल गया है इस जगत में आकर, और अपना ही खुद का जगत बना रहा है सुखी होने के लिए, इस वजह से वो दुखी है। अभी देखिए ये सारा अपना साक्षात्कार सुना रहे हो, ये केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे हम केवल सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन जा रही है, ये इनका रिलाइज है, साक्षात्कार है इनका, सिद्ध आत्मा है। तो बताते हैं कि लोग क्यों भूल जाते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के कारण, स्वार्थमय जीवन। अरे भैया अगर स्वार्थ देखना भी है, अगर आप स्वार्थी हो ही तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, अपना स्वार्थ ऐसा बनाइए कि विष्णु की तरफ गति हो आपकी, विष्णु में मति लगे आपकी, ऐसा स्वार्थ रखिए। लेकिन नहीं, फिर वो एक अगले श्लोक में एक बड़ा एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए भौतिक जगत का जो सुख है, जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, वो कितना निरर्थक है, कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है इसमें, अर्थहीन है। तो एग्जाम्पल देते हैं कि एक हिरण होता है, हिरण रेगिस्तान में भागता जा रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो दूर से देख रहा है कि रेत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो किरणें पड़ रही हैं, वहाँ से भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि वहाँ सरोवर है, जलाशय है, और हिरण को पानी पीना है, उसे पानी का सुख चाहिए, अपनी प्यास बुझानी है। तो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, जितना आगे वो जाता है वो सरोवर और आगे हो जाता है, और आगे भागता है सरोवर और आगे हो जाता है। इस पर भागते 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 वो अपने प्राण दे देता है इस बात से बेखबर कि वह पास में कहीं जलाशय है जहाँ पर वो पानी पी सकता था। और विनाश चक्रतिपाद इस टीका में बड़ा इसको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं वो कि कोई जल है तो कभी कभी आप देखेंगे पानी घास से आच्छादित होता है, कवर्ड होता है, वो पानी दिखता नहीं लेकिन घास में पानी होता है, वो ऐसा कभी कभी देखने में आता है। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जीव है, वो जो सच्चा सुख है उसकी तरफ ना भाग कर इस दृश्य जगत में, इस बाहरी जगत में, इस प्राकृतिक जगत में अपना सुख ढूंढ रहा है, जैसे हिरण भाग रहा है इस बात से बेखबर कि पीछे जलाशय है। तो प्रभा जी बोलते हैं कि जो भौतिकवादी होता है वो कहाँ सुख ढूंढता है? बाहर सुख ढूंढता है। जो आध्यात्मवादी होता है वो कहाँ सुख ढूंढता है? अंदर, हृदय का सुख ढूंढता, आत्मा का सुख ढूंढता, भक्ति का सुख ढूंढता। ये बहुत बड़ा फर्क है भौतिकवादी में और आध्यात्मवादी में। भौतिकवादी हर चीज में बाहर ढूंढेगा, किसने कहा, किसने क्या बोला, कहाँ क्या हो रहा है। आध्यात्मवादी सब कुछ अंदर देखेगा, मैं इस स्थिति में कैसे इंप्रूव हो सकता हूँ, मैं अपने आप में कैसे सुधार कर सकता हूँ। तो इस तरह आध्यात्मवादी जो अंदर सुख ढूंढते हैं और भौतिकवादी बाहर सुख ढूंढते हैं। और फिर वो एक बड़ा अच्छी चीज बताते हैं, फ्यूटिलिटी ऑफ इंजॉयबल ऑब्जेक्ट्स, यानी वो भौतिक वस्तुएं जो इस जगत में जीव चाहना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है सुख प्राप्ति के लिए, उनकी निरर्थकता बताते हैं। वो बताते हैं कि यदि मान लीजिए कोई बहुत श्रम कर भी ले और बहुत धन कमा ले, गाड़ी कोठा बंगला सब कर भी लेता है, अगर क्या फायदा उसका? क्यों? क्योंकि कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। और ऐसा देखा जाता है भौतिक जगत में, हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग बहुत धन कमाने का प्रयास करते हैं और अचानक ही खबर आ जाती है कि फलाने फलाने धन्ना सेठ गुजर गए। वो बोलते हैं क्या फायदा है ऐसा, इतनी मेहनत करी, आपको तो कुछ मिला ही नहीं, केवल श्रम भी केवलम रहा। और जो संपत्ति उसने कमाई है, जो धन संपत्ति कमाई, उसका आनंद कौन उठाते? दूसरे लोग, घर परिवार के लोग। कभी कभी तो घर परिवार के लोग, एक धनी व्यक्ति को हम जानते हैं जिसे घर परिवार के सारे लोग एक तरह से कहें तो पागल तरह के ही हैं। तीन लड़के हैं उनके, वो तीनों ही दिमाग संतुलित नहीं है उनका, तीन बहू है उनका भी दिमाग संतुलित नहीं है। अब बाहर के लोग फायदा उठा रहे हैं उनकी धन संपत्ति का, खूब पैसा कमा रहे हैं, ग्वालियर में है वो, तो ऐसा भी देखा जाता है। तो बोले क्या फायदा ऐसा धन कमाने का, ऐसा धन कमाने का यूज है? हाँ, लेकिन जरूर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं कि भक्त जो होता है वो कमाता है जितना वो शरीर को आत्मा को रख सके, अपनी जीविका चला सके, अपना आराम से भजन कर सके, उतना वो कर सकता है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। फिर आगे बोलते हैं कि देखिए जो धनी व्यक्ति होता है उसकी वो मनोदशा बता रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति होता है वो धन तो कमाता है लेकिन उसको क्या हो जाता है? चिंता और भय हो जाता है। किस बात का भय? बड़ी श्रम करके, मेहनत से श्रम कमाया, दिन रात एक करके धन कमाया, अभी चिंता है उसको। किस बात की चिंता? धन कहीं कोई ले ना जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेट ना मार दे, परिजनों को वो संदेह की निगाह से देखता है, सब पे भी वो शक रहता है, इनकी निगाह मेरे पैसे पे, मेरा पैसा ना लेके चले जाए, या तरह तरह की उसको चिंताएं होती हैं कि मेरा धन मुझसे कहीं चला ना जाए, प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, इस तरह की तरह तरह की वो चिंताएं करता है। और फिर वो आगे बताते हैं कि देखिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करे, भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दे। अच्छा बुद्धिमानी इसी बात में है कि वो भौतिक इच्छाओं को छोड़ ही दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि अगर वो भौतिक इच्छाएं रखेगा तो उसके साथ चार पांच अवस्थाएं आएंगी, स्टेजेस आएंगी जिसका वो सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सी अवस्था है? जब भौतिक इच्छाएं रहेंगी तो शोक, दुख होगा उसको, फिर क्या होगा? भय होगा, मोहित हो जाएगा वो, इस तरह की उसको शोक, मय, भय, क्रोधा, राग उत्पन्न होगा, द्वेष भी होगा, इत्यादि स्थिति से वो गुजरेगा। तो श्री विश्वनाथ चक्रधरीपाद बोलते हैं कि एक व्यक्ति को चाहिए कि अपना शारीरिक बल और धन बल यदि उसे अर्जित करना है तो उतना करे जितना कि उसके भजन के लिए, उसकी भक्ति के लिए अनुकूल हो, पर्याप्त हो। ज़्यादा बहुत अधिक संचय करने की आवश्यकता उसको नहीं है। फिर आगे चल के परिचित अवधूत ब्राह्मणा दो बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं। वो अपने दो गुरुओं के बारे में बताते हैं कि मेरे दो गुरु थे और बताते हैं उनसे मैंने क्या सीखा। तो पहला गुरु कौन है उनका, आप लोग जानते होंगे, मधुमक्खी। मधुमक्खी से क्या सीखा उन्होंने? मधुमक्खी से सीखा डिटैचमेंट, वैराग्य, विरक्ति सीखी। क्यों भाई, कैसे? तो बोले मधुमक्खी बहुत श्रम करती है, बहुत परिश्रम करती है। एक फूल से दूसरे फूल पे आना, दूसरे तीसरे फूल पे जाना, पराकण को बनाना, फिर शहद बनाना। इतना परिश्रम करने के बाद भी सहनता, तो यही देखा जाता है कि वो छत्ता, मधुमक्खी को छत्ता को दूसरा व्यक्ति ले जाता है। तो बोले ये देख के मैं इस भौतिक जगत के आकर्षण से, यहाँ के प्लोमर से विरक्त हो चुका हूँ, बेकार है ये करना, कुछ फायदा नहीं। तो वो मधुमक्खी शिक्षा लेते हैं कि संसार में व्यक्ति को विरक्त होकर जीवन जीना चाहिए, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, किसी स्थान से, किसी स्थिति से, किसी वस्तु से। क्योंकि आसक्ति अगर हुई तो आप देखिएगा, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से हम आसक्त होते हैं, सहता ये देखने में आता है कि वही व्यक्ति या वही वस्तु हमारे दुख का कारण बनती है। तो बोलते हैं कि मैंने तो एक मधुमक्खी से शिक्षा ले ली। फिर दूसरा बताते हैं अजगर। अजगर से उन्होंने सीखा संतुष्ट रहना, सेटिस्फैक्शन इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। अजागर वृत्ति, अजगर करे ना चाकरी। अजगर क्या करता है, बाकी जो जीव जंतु हैं वो अपने पेट पालन के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। अजगर एक ऐसा जीव है जो कुछ नहीं करता, वो जहां वहीं रहेगा और विधि के विधान से जो उसको मिल गया, जितना मिल गया उसको खा के वो संतुष्ट रहता है। तो वो बोलते मैंने अजगर से ये चीज सीखी है कि व्यक्ति को चाहिए इस जगत में अगर उसे सुखी रहना है तो जो है वो संतुष्ट रहे हर हाल में, हर परिस्थिति में। कहते हैं ना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो जो व्यक्ति इस जगत में संतुष्ट रहना सीख गया हर हाल में, हर परिस्थिति में, उसको विधि का विधान समझकर, जैसा भगवान रख रहे हैं वो मेरे अनुकूल है, मेरे लिए श्रेयस्कर है, जिसने ये चीज को अपनी चेतना में बिठा लिया, समझ लीजिए इस भौतिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो उसको थोड़ा सा भी विचलित कर सके, उसको डिस्टर्ब कर सके। ऐसा नहीं भक्ति भी करते हैं हम लोग, तो हमें कभी कोई डिस्टर्बेंस आता है ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन हम लोग फिर शास्त्र सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और जो हमारी चेतना डैमेज हुई है वो सब कवर अप हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। नहीं नहीं ठीक नहीं है, शास्त्र बताते हैं, भागवत बोल रही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो भक्त इस तरह से अपनी चेतना को संतुष्ट कर लेता है। फिर आगे वो बताते हैं अवधूत है, चूंकि वो प्रहलाद महाराज ने ईटिंग हैबिट की बात करी थी कि आप तो बहुत मोटे हो, तो अपने आदतों के बारे में बताते कि मैं कैसे खाता हूँ। तो वो बताते हैं कि मेरे को जब जितना मिल जाए, कम मिले ज़्यादा मिले, मैं क्वांटिटी नहीं देखता, स्वाद नहीं देखता, स्वाद है कि नहीं है, स्वादिष्ट है कि नहीं है। अभी यहाँ तो हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रसाद दे देते हैं, फीस्ट होती है इसका वृंदावन में, स्वीट्स भी कभी कभी तीन तीन चार चार स्वीट्स होते हैं। बोले मुझे जो मिल जाए ऐसा मैं ग्रहण कर लेता हूँ, ना मैं मात्रा की चिंता करता हूँ, ना मैं ये देखता हूँ कि जीव यहाँ के स्वाद के अनुसार है या नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि मैं अपनी सोने की आदत के बारे में बताते हैं कि जैसा मुझे मिल रहा, कभी धरती पर, कभी घास के ऊपर, कभी पहाड़ पर, कभी महल में, जहाँ जैसी जगह मिलती है वैसे सो जाता हूँ। ट्रेवलिंग करता हूँ तो कभी कभी बहुत अच्छी तरह से हमें बढ़िया चीज़ मिल जाती है तो अच्छे वस्त्र पहन लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, चंदन का लेप लगाता हूँ, कभी कभी अवधूत की तरह बिना कपड़ों का भी विचरण करना पड़ता है मुझे। तो इस तरीके से वो बताते हैं। और फिर आगे श्लोक आता है जब वो बताते हैं कि मैंने क्या किया, इस जगत में अच्छे और बुरे का भेद करना बंद कर दिया। जनरली लोग भौतिक जगत में अच्छे और बुरे का भेद करते हैं, ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है, ये सिचुएशन अच्छी है, वो सिचुएशन अच्छी। बोले मैंने भेद करना बंद कर दिया, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। क्यों? बोले कि जो भौतिकवादी अच्छा कार्य कर रहे हैं वो पुण्य का पुण्य पुण्य लोग कमाएंगे, स्वर्ग लोग में जाएंगे, जो बुरा काम करेंगे वो निम्न लोग में जाएंगे। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ना उनकी प्रशंसा करता हूँ अच्छे कार्य देखने पर, ना मैं उनकी निंदा करता हूँ, लेकिन मैं एक कार्य जरूर करता हूँ। क्या? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये भी आपकी भक्ति में आए, अध्यात्म का भक्त को ग्रहण करो और सुखी रहे। तो ऐसी मैं उनके प्रति कामना करता हूँ, मैं उनका वेल विशर हूँ। ये अपना विजन वो भौतिकवादी व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। और फिर आगे का श्लोक है 43 और 44, जो कि इस अध्याय का सबसे टेक्निकल श्लोक और टफ श्लोक है ना मेरे को लगा। और इसी की हमारी क्लास भी थी रविवार के दिन, विधि कुछ ऐसी योजना ऐसी बनी कि छठी क्लास से आने के बाद वापस लौटना पड़ा। तो इसमें प्रभुपाद जी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, योगी के बारे में बताया गया, तो हम भी उतनी बात करेंगे जितनी प्रभुपाद जी ने बोली है। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं योगी की प्रक्रिया की, किस तरह से योगी इस भौतिक जगत में अपने मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो योगी का दृष्टिकोण क्या होता है, जो अष्टांग योगी होते हैं वो, उनको परमात्मा पर चित्त लगाना पड़ता है, मन को लगाना है। लेकिन उनको एक बाधा आ रही है। क्या बाधा आ रही है? जब उस जगत की विविधताएं देखते हैं, इस जगत की वस्तुओं को देखते हैं, तो उनके मन में एक वृत्ति, चेतना में एक वृत्ति डेवलप हो जाती है। इसको बोलते हैं मनोवृत्ति। उदाहरण के लिए उन्हें एक गिलास देखा, तो गिलास देख के कहा, देखिए अरे ये तो मेरा गिलास है, तो एक वृत्ति चेतना में आ गई। और यदि ये गिलास कोई मेरा चुरा के ले गया, ये मेरा दुश्मन है, ये दूसरी वृत्ति आ गई। और वो गिलास किसी ने वापस ला के दे दिया, अरे ये तो बड़े अच्छे प्रभु जी हैं, ये मेरा मित्र है। तो इस तरह भौतिक जगत की वस्तुओं को देखकर तरह तरह की वृत्तियां चेतना में बनती हैं, और वो वृत्तियां बाधक हैं मन को परमात्मा में लगाने में, क्योंकि मन अभी अस्थिर है, स्थिर नहीं है मन। तो क्या करें, मन को कैसे स्थिर करें? तो वो एक रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्रिएशन लेते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि वृत्ति मन चित डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों? वस्तु के कारण, क्योंकि वस्तु देख के वृत्ति, तरह तरह की वृत्तियां बन रही है, अच्छा है ये, बुरा है। वो पुजारी जी बड़े अच्छे हैं क्योंकि मुझे रसगुल्ला दे देते हैं, वो पुजारी बड़े खराब हैं क्योंकि जब भी मैं मांगता हूँ रसगुल्ला तो रसगुल्ला तो देते नहीं है वो, तो कुछ ऐसा दे देते हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है वस्तु विविधताओं के कारण, मेनीनेस के कारण। तो वो इन्होंने ऐसा पद्धति निकाली, वृत्ति कहाँ से आ रही है? मन से आ रही है। तो वृत्तियों कहाँ डाल दो? मन में डाल दो। देखिए ये पूरा मेंटल प्रोसेस है, ये मानसिक प्रक्रिया है, फिजिकल नहीं चल रही है, ये सब मानसिक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। तो वृत्तियों को मन में डाल दो। मन कहाँ से आ रहा है? विकारी का अहंकार से आ रहा है। विकार अहंकार है सात्विक अहंकार, तो मन को सात्विक अहंकार में डाल दीजिए। सात्विक अहंकार कहाँ से आ रहा है? प्रधान से आ रहा है। प्रधान को तो सात्विक अहंकार को प्रधान में डाल दीजिए। प्रधान कहाँ से आ रहा है? माया से, प्रकृति से आ रहा है, तो प्रधान को प्रकृति में डाल दीजिए। इस तरीके से वो जिस तरह से सृष्टि निकली है उसी को वापस डालते हैं, उसे बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर, उसमें डालते हैं। और फिर वो परमात्मा पे अपने चित्त को स्थिर कर हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। ज्ञानी कैसा करता है? ज्ञानी का क्या कॉन्सेप्ट है? सृष्टि कहाँ से आई? सबसे पहले कहा था ब्राह्मण, आखिरी में क्या है? ब्राह्मण। सृष्टि कहाँ से निकली? ब्राह्मण से। शुरू में ब्राह्मण, आखिरी में ब्राह्मण। लेकिन मैं तो बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ यहाँ पे, तो इतने सारे प्रभु जी हैं, समान है, सब कुछ है सारी चीज। नहीं नहीं, ये सब इल्यूजन है, ये माया है, ये नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको वो वैदिक वेदांत सूत्र का अध्ययन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि है ब्रह्म में मिलना। लेकिन प्रभा जी तात्पर्य में सीधा बोल देते हैं, योगी की थोड़ी चर्चा करके सीधा बोल देते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशम। और वो श्लोक कोट करते हैं 14वें अध्याय का 26वां श्लोक, यो मम च व्याभिचारिणा भक्ति योगिना सेवते सगुणान समति यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। प्रभा जी बोलते हैं योगी में सबसे बड़ा योगी कौन है? भक्ति योगी है। तो अर्जुन से पूछे, भगवान आपकी सेवा कैसे की जाए? तो भगवान बोलेंगे भक्ति योगिना, भक्तियों से मेरी सेवा करो। कौन सी भक्ति करनी है? अव्यभिचारिणी भक्ति करनी है। अव्यभिचारिणी भक्ति यानी एकांतिका भक्ति, वेष्ट चतुर्थी पाठ ट्रांसलेट करते हैं, या अनन्या भक्ति। उससे क्या होगा? अनन्या भक्ति करोगे आप, सगुणान समितियान व्यभिचारी भक्ति करोगे आप, तो आप तीनों गुणों को योगी भक्ति योगी तीनों गुणों को क्रॉस कर लेता है, लांग लेता है। एक्चुअली अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि तीनों गुणों को भक्ति योगी कैसे लांगता है, तो भगवान ये प्रोसेस बताते हैं, भक्ति योगी का प्रोसेस। इस तरह से वो तीनों गुणों को लांगता है। अभी फिर आज का श्लोक, श्लोक क्रमांक 46 जो आज का अंतिम श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं अनुवाद में कि प्रहलाद महाराज जब सारा प्रवचन सुन लिया उनसे, और वो बोलते हैं अद्भुत ब्राह्मण की, देखिए मैंने आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा कि मैं इतना मोटा क्यों हूं, तो मैंने आपको सारी अपनी आत्मकथा बता दी है, और आप तो महाभागवत हैं, भगवत तत्व वाले, मैं तो एक सी हूँ, अपनी नम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं वो, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, आप तो महाभागवत हैं, आपको हिस्ट्री में नाम है, तो मैं अपनी सारी बातें आपको बता चुका, ये मैंने अपनी हिस्ट्री सुनाई है, मेरा इतिहास सुना है आत्म साक्षात्कार का। तो प्रहलाद महाराज चूंकि महाभागवत हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उनकी अनुमति लेकर अपने घर पे वापस चले जाते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी चेतन चरितामृत से एक श्लोक कोट कर रहे हैं, कीवा विप्रा कीवा नासी शूद्र कहने नए, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु हुए। तो ये प्रश्न ये उठ रहा है कि प्रभुपाद जी ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, तो इसका उत्तर देते हैं, प्रभुपाद जी खुद ही उत्तर दे रहे हैं कि देखिए प्रहलाद महाराज कौन है, देखा जाए बड़ा व्यवस्था से अगर देखें तो प्रहलाद महाराज एक गृहस्थ आश्रम में, लेकिन वो अवधूत ब्राह्मण, तो प्रहलाद महाराज गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी और वो हमारे गुरु हैं, हम उनको गुरु मानते हैं, क्यों? क्योंकि भगवत तत्व को जानते हैं, वो सिद्धांतों को समझते हैं, और 12 महाजन्म उनका नाम है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वो श्लोक कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंधे से, ये परामर्श जो होता है वो वर्णाश्रम व्यवस्था उस पर लागू नहीं होती है। प्रहलाद महाराज हालांकि गृहस्थ आश्रम में है, एक परमहंस स्तर पर है, इतिहास में उनका नाम होता है, 12 महाजन्म उनका नाम आता है। तो ये यहाँ पे इस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि देखिए ऐसा आवश्यक नहीं गुरु केवल ब्राह्मण कुल का ही हो। हाँ, अगर वर्ण व्यवस्था की जब बात आती है तो वर्ण अवस्था में सिद्धांत आचार्यगण बताते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो गुरु हमेशा ब्राह्मण कुल का ही होना चाहिए, नीचे के वर्णों को गुरु नहीं स्वीकार किया जाता है। ले प्रभा जी बोलते हैं और दूसरे हमारे पूर्वती आचार्यगण भी बोलते हैं कि अगर बात आध्यात्म की आ रही है, कृष्ण भावनामत की बात आ रही है, भक्ति के सिद्धांत की बात आ रही है, वैष्णव सिद्धांत की बात आ रही है, तो यदि वहां पर कोई व्यक्ति है वो यदि कृष्ण को तत्व से जानता है, यही कृष्ण तत्वता भगवत तत्व विज्ञानम, जो कृष्ण ब्रह्मेति परमादिति भगवान इति शब्दते, जिसको जानता है, जानने का मतलब केवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं, साक्षात्कार किया हुआ है, रियलाइजेशन है इसके पास, ज्ञान भी है शास्त्रों का, विज्ञान भी है, फिर भले वो ब्राह्मण हो, बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा, शूद्र है तो भी उसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, वो किसी भी वर्ग का, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ग का, उसको आराम से स्वीकार किया जा सकता है। इस बात को प्रभुपाद जी इस बात को, इस सिद्धांत को प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में स्थापित कर रहे हैं कि वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं है, और हम देखते भी हैं कि जितने भी प्रामाणिक संप्रदाय हैं वह सभी इस सिद्धांतों का पालन करते हैं। या हम चंद्र चौथा में देखेंगे अगर, तो असारंत प्रभु हैं, वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उनका, इन्होंने गुरु कौन है, श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु कौन है वर्णाश्रम की दृष्टि से, वर्णाश्रम व्यवस्था की दृष्टि से वैश्य हैं, तभी ब्राह्मण ने वैश्यों का पे गुरु बना, क्योंकि श्यामानंद प्रभु जय कृष्ण तत्ववेता, साक्षात राधारानी का दर्शन किए हैं वो। या और भी उदाहरण आते हैं, जैसे कि राम नारायण चक्रवर्ती और गंगा नारायण चक्रवर्ती दोनों ब्राह्मण है, गुरु किसको बनाया इन्होंने, जो वैश्य है, कौन है वो, नरोत्तम दास ठाकुर, तो उन्होंने उनको अपने से नीचे वर्ण के व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर महाभागवत है। तो यह सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत में नहीं चलता रहा, और भी जितने भी प्रामाणिक संप्रदाय सभी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। तो जहां तक गुरु की बात आती है तो वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ण व्यवस्था से हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है, वाकई में जानता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, इसको उसका साक्षात्कार है हृदय में, ऐसे व्यक्ति को वो नीचे कुल का भी है तो उसे गुरु स्वीकार किया जा सकता है। बल्कि चाणक पंडित भी एक जगह बात बोलते हैं, श्रीपाद जी के तात्पर्य ने पढ़ा था कि सोना अगर गंदी जगह भी गिर जाए, फिल्थी प्लेस में गिर गया तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि सोना है ये। वैसे ज्ञान अगर निम्न कुल के व्यक्ति से भी मिल रहा है, लेकिन अगर ज्ञान प्रमाणिक है, सही ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। तो वैसे श्रीमद् भागवतम क्लास में भी, मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ विशेष रूप से, कि जब भी श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है, इसका नाम ही श्रीमद् भागवतम कथा, श्रीमद् भागवतम क्लास, तो इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि भागवत की ही चर्चा हो, यहाँ हाई फायर नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। हाँ, यदि किसी का कोई साक्षात्कार है और वो सिद्धांत प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आचरण कर बता रहे हैं, और किसी वक्ता ने उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा है, उतारने का प्रयास किया है, तब वो थोड़ा सा अपने बारे में बोल सकते हैं कि देखिए कि आचरण प्रभुपाद जी सिद्धांत बता रहे हैं, और देखिए मैंने अप्लाई किया है, तो देखिए ये तो काम कर रहा है, तो दूसरों को विश्वास देने की भावना से हल्का सा वो बोल सकते हैं, उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। भागवतम क्लास में प्रयास ये होना चाहिए हमारा कि हम भागवत कथा की ही चर्चा करें। ये एक भक्त का जो है इस पूरे अध्याय से हमें सीखने को मिलता है। तो इतने कम समय में हमने कोशिश करी है कि पूरा अध्याय में अभी तक जो कुछ हुआ वो श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 46 तक कवर करने का प्रयास किया है। कोई समय हो चुका है, प्रसाद का समय हो गया है, कोई यदि कोई अपना कमेंट देना चाहे तो दे सकता है, बाकी लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सॉरी, शिवाज ठाकुर के बारे में करेक्ट, तो देखिए शिवास पंडित ना, माइक है क्या, मैं कुछ शिवास पंडित के बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ, उनका त्रिभाव दिवस है, तो इसमें एक जगह अद्वित ब्राह्मण ये बोलते हैं कि जो आप जैसे महान भक्त पब्लिक ओपिनियन का ध्यान नहीं रखते, तो जो भक्त होता है वो ज्यादा पब्लिक ओपिनियन पर ध्यान नहीं देता है, वो साधु गुरु शास्त्र ओपिनियन पर ध्यान देता है। तो शिवास ठाकुर के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि जब उनके घर के सामने गोपाल चापल ने दुर्गा पूजा का सामान रख दिया था, पूजन लाल सामान, लाल फूल, लाल चंद इत्यादि, तो सुबह जब उन्होंने देखा तो उन्होंने नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, मैं नहीं हूँ, उन्होंने अपने आप को सेव नहीं किया, उन्होंने वो सबको बुला लिया, आओ देखो देखो मैं रात मैं दिखाता हूँ कि मैं वैष्णव हूँ, विष्णु का भजन करता हूँ, और लेकिन देखिए मैं एक्चुअली देवी का वर्षिपर हूँ। तो उन्होंने पब्लिक की चिंता नहीं की, पब्लिक ओपिनियन की। तो जो भक्त होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन की चिंता नहीं करते, वो देखते हैं साधु गुरु शास्त्र क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। समय का अलग से पूछ लीजिएगा, है डिस्कस लेटर, बाद में पूछ लीजिए।